500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले से राजनीतिक दलों के सिर पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। अगले साल ही उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से खर्च की सीमा तय होने के बावजूद तमाम उम्मीदवार इन चुनावों के दौरान हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसके लिए वे पहले से ही नकद चंदे के तौर पर यह रकम जुटा रहे थे, लेकिन सरकार के फैसले से उनके सामने भारी समस्या पैदा हो गई है। भारत में साल दर साल चुनावी खर्च सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है। तमाम उम्मीदवार इसके लिए 6 महीने पहले से ही नकदी जुटाने में लग जाते हैं। जाहिर है यह रकम 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में ही होती है, लेकिन सरकार की ओर से हुई इस ताज़ा सर्जिकल स्ट्राइक ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भारी झटका दिया है। उनके लिए इस सदमे से उबरना आसान नहीं होगा। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस तरह जुटाई गई ज्यादातर रकम बेहिसाबी होती है। इस वजह से अब उनके सामने इन नोटों से निजात पाना एक बड़ी समस्या है। वे कानूनी तौर पर न तो इन रुपयों को बदल सकते हैं और न ही इसे खर्च कर सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में बड़े पैमाने पर रकम खर्च की जाती है। वहाँ यह मनी पावर चुनावी रणनीति और प्रबंधन का अहम हिस्सा है। अब सरकार के ताजा फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दल और उम्मीदवार नई रणनीति बनाने और चुनावी खर्च में भारी कटौती की योजना बनाने में जुट गए हैं। बड़े नोटों पर पाबंदी का यह फैसला हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने ही लिया है, लेकिन इस पार्टी और उसके नेताओं को भी इस फैसले से झटका लगा है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगडोह कहते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव अभियान के लिए बड़े पैमाने पर काला धन जुटा रखा था। सरकार का यह फैसला उस काले धन पर करारा हमला है। वे कहते हैं कि तमाम दलों के पास रखी यह रकम अब बेकार हो चुकी है। ताजा फैसले के बाद अब उनको नए सिरे से अपनी रणनीति तय करनी होगी। एक अन्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त HS ब्रह्म कहते हैं कि भारत में चुनाव में मनी पावर यानी धन का प्रचलन हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। अब सरकार के फैसले से कम इस मामले में तमाम उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिलेगा। खासकर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से चंदे के तौर पर चुनावी खर्च बटोरने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए संकट काफी बढ़ गया है। एक अर्थशास्त्री रोहित खंडेलवाल कहते हैं कि आम लोग बखूबी जानते हैं कि सबसे ज्यादा काला धन कहाँ इस्तेमाल होता है।
सबसे पहला जो आम आदमी का रिएक्शन था जैसे ये घोषणा हुई कि अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ब्लैक मनी कहाँ जाता है और किस काम आता है। हर आम आदमी की सोच ये थी।
भारतीय चुनाव में नकदी का भारी बोलबाला रहा है। वर्ष 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च के लिए 1299.53 करोड़ रुपए चेक के जरिए जुटाए था और 1039 करोड़ नकदी के तौर पे। कांग्रेस ने वर्ष 2004 से 2014 के बीच होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जो 2259.04 करोड़ की रकम जुटाई थी, उसका 68.33% हिस्सा नकद के तौर पे था। इसी दौरान भाजपा ने 1983.37 करोड़ जुटाए और इसका 44.69% हिस्सा नकद के तौर पर था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2004 से 2015 के दौरान हुए 71 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कुल चंदे में से 63% यानी 2108 करोड़ नकदी के रूप में लेना स्वीकार किया था और महज 37% यानी 1245 करोड़ चेक के रूप में। इसी से चुनाव में काले धन की बढ़ती अहमियत का पता चलता है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए नकदी के तौर पर मिले दान और चंदे का खुलासा करना अनिवार्य है, लेकिन देश में होने वाले चुनाव के दौरान जब्त होने वाली नकदी का आंकड़ा कुछ और ही कहता है। मिसाल के तौर पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने 330 करोड़ की नकदी जब्त की थी। उससे साफ है कि चुनाव में काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है और इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल पाक साफ नहीं है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि खासकर क्षेत्रीय दलों पर इस पाबंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। इसकी वजह यह है कि उनके पास भारी नकदी के प्रबंधन के लिए न तो जरूरी संसाधन हैं और न ही रणनीतिकार। एक पर्यवेक्षक का कहना है कि जब तक राजनीतिक दलों पर नकदी के रूप में चंदा जुटाने पर पाबंदी नहीं लगती, तब तक काले धन पर पूरी तरह अंकुश लगाना संभव नहीं है।